ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्याय 8वां और श्लोक संख्या है 18, 19 और 20। तीन श्लोक साथ में लेंगे। तीनों श्लोक एक दूसरे को अनुरूप हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अह आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके भूतग्रामः सह एव अयम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रभवति अहः आगमे। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यह रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यह रागमे। अव्यक्ताद् अव्यक्त से व्यक्तयः जीव सर्वाः सारे प्रभवन्ति प्रकट होते हैं अह आगमे दिन होने पर रात्रि आगमे रात्रि आने पर प्रलीयन्ते विनष्ट हो जाते हैं तत्र उसमें एव निश्चय ही अव्यक्त अप्रकट संज्ञ के नामक कहे जाने वाले। अनुवाद है, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः समस्त जीवों का समूह सह वही एव निश्चय अयम यह भूत्वा भूत्वा बारंबार जन्म लेकर प्रलीयते विनष्ट हो जाता है रात्रि रात्रि के आगमे आने पर अवशः स्वतः पार्थ हे प्रथापुत्र प्रभवति प्रकट होता है अहः दिन आगमे आने पर। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों की प्राप्ति कर सकते हैं किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन कर सकते हैं किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वो विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं किंतु रात्रि होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंततो गत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक प्राप्त होते हैं और वहाँ पर पुनर्जन्म के चक्कर में से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। और ये 20वां श्लोक है। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तागत सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परम पर यानी परम तस्मात् उस तो लेकिन भाव प्रकृति अन्य दूसरी अव्यक्त अव्यक्त अव्यक्तात् अव्यक्त से सनातन शाश्वत यह स वह जो सर्वेषु समत् भूतेषु जीवों के नश्यत्सु नाश होने पर न कभी नहीं विनश्यति विनष्ट होती है। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमदेशी भक्ति विदान स्वामी शुरू प्रभुपाद के द्वारा। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण तथा सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। इन तीनों श्लोकों का जब साथ में हम समझाने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम देहधारी मनुष्य भगवान के अंश होते हुए भी हमारा देह के साथ का लगाव है वो छोड़ने की संभावना बना रहेगा। ज्यादातर हमें अपने भौतिक जीवन में जो जन्म मृत्यु का अनुभव है वो शरीर या शरीर द्वारा जो हम आंखों से देखने का प्रयत्न करते हैं उसके अनुमान में बहुत मर्यादित अनुभव पाते हैं। हम आंखों से जो देखते हैं तो वो आंखों की मर्यादा सिर्फ भौतिक देह पर ही है। आंखें मन बुद्धि अहंकार वाले सूक्ष्म शरीर को भी नहीं देख पाती। इंद्रियों से हम अपने मनोभाव या मन की कल्पनाएं या जो मन के जो जो विचार हैं उनसे हम समझने की कोशिश नहीं कर पाते। तो इंद्रिय जनित ज्ञान और इंद्रियातीत ज्ञान यहाँ भगवान प्रकट करते हैं। वैसे जब हम दूसरे जीवन की बात करते हैं उसके प्रति भी हमें ज्यादा नासमझ होने के कारण हम निश्चित रूप से नहीं कह पाते कि अगला भव क्या होगा। हमें तो थोड़ा श्रद्धा और धार्मिक वातावरण यदि परिवार से मिलता है तो उसमें मान्यता ज्यादा हमें इस तरफ थोड़े आगे बढ़ाने की कोशिश करती है कि थोड़ी समझ पाए। लेकिन ये समझाने वाले भी धर्मगुरु ज्यादा होते नहीं, इसलिए सारा जीवन में जो रहस्य है वो हमारे समक्ष प्रकट नहीं होता। ये धर्म की हानि कहलाती है, ग्लानी कहलाती। तब भगवान के मूल विचार भगवान की जो समझ है वो भगवान के विशुद्ध भक्त द्वारा हमें यदि पाने का मौका मिलता है तो कितना बड़ा सद्भाग्य कहलाता है। ज्यादातर हम अज्ञानता में पैदा हुए हैं, अज्ञानता में जीते हैं और अज्ञानता में मरते हैं, यानी कि सारा जीवन पशुवत कहलाता है। हम समझ रहे हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर ज्ञान प्राप्त करके हम अपना जीवन बनाएंगे, पर लेकिन वो भी तो पेट पूर्ति का ही ज्ञान होता है। वास्तविकता जो हमारी समक्ष खड़ी है उसके लिए हम न तो चिंतित हैं, न तो हमें याद भी रहेगा कि हमें मरते समय क्या करना। भगवान यहाँ ये प्रकृति जो है इनकी व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति के बारे में बताते हैं, लेकिन ये सिर्फ भौतिक आने जाने वाली प्रकृति की बात नहीं कर रहे। वो तो ब्रह्मा जी को भी परवशता होती है, तो हमें क्यों नहीं। हम अपने 100 साल के ये जीवन की अवधि भी पूरी नहीं कर पाते और बीच में ही करीबन 70 साल की उम्र में चले जाना पड़ता है, लेकिन हमारा सारा जीवन संघर्ष देखोगे तो अज्ञानता के विषय पर ही बना रहता है। वास्तविक काम चलाओ जीवन वास्तविक नहीं कहलाता है। वास्तविकता सनातन होती है, दूसरी वास्तविकता काम चलाओ वो वास्तविक नहीं है, वो ठगावी है। शरीर मरने वाला है, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युं जन्म ध्रुवम मृतस्य च। ये सिद्धांत भगवान ने पहले बताया, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरा है तो निश्चित रूप से पुनः पैदा होगा। हम पैदा नहीं होते, हमारा शरीर पैदा होता है जबरदस्ती से। पंचमहाभूत में शरीर मिल जाएगा, लेकिन वही पंचमहाभूत का मिश्रण दूसरा शरीर भी बनाएगा। हर एक शरीर में पंचमहाभूत इस भौतिक दुनिया में पाए जाते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। चाहे लकड़ी का शरीर भी क्यों न हो, जो वृक्ष का शरीर में से लकड़ी बनती है, तो लकड़ी में भी तो यही 5 तत्व है और अपने शरीर में भी तो यही 5 तत्व है, कोई छठा तत्व नहीं बताया। जो आने वाला, थोड़ी देर टिकने वाला और बाद में जाने वाला, निश्चित रूप से जो जाएगा वो पुनः दूसरा शरीर प्राप्त करेगा। लेकिन भगवान तो हमें धीरस तत्र न मुह्यति कहा है, जो जीवन का रहस्य जानने के लिए जो कोशिश करता है वो धीर गंभीर पुरुष ये आने जाने वाले स्वभाव पर मोहित नहीं होता, क्योंकि ये दूसरी प्रकृति के बारे में वो जानकार है। वो कौन सी प्रकृति? तो इसीलिए ये ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव है, शरीरधारी है, पंचमहाभूत शरीरधारी, और इनका जो जीवन का जो नाप है वो कितना लंबा है हमारे से, उसकी बात कर रहे हैं। अहह यानी कि एक दिन, दिन 12 घंटे का कहलाता है और रात्रि भी 12 घंटे की कहलाती है, तो उसे कल्प के रूप में यही अध्याय में पहले बताया जा चुका है। कल्प की गिनती भी बताई गई है। आपने सुना होगा कि जब इलाहाबाद में कुंभ मेला होता है तो कुंभ मेले में लोग कल्पवास करने आते हैं। ये कल्पवास क्या है? धार्मिक मनुष्य लंबा जीने की चाहना से कहते हैं कि पुण्य हम इकट्ठा करेंगे, देवताओं की पूजा करके, ब्रह्मा जी आदि देव हैं और सभी देवताओं को शरीर देने वाले भी तो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने ही तो रचना की है। ब्रह्मा जी शरीर देते हैं, जीव नहीं देते। ये आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, जो साधन जो जुटाए जाते हैं उसमें से कुछ 84 लाख योनियां बना लेते हैं अलग अलग प्रकार के। हर एक योनियों में जीव जो भगवान विरोधी अलग इच्छा करके आया है तो उसमें उसको इच्छा के अनुरूप योनियां मिलेगी। ये प्रकृति का सिद्धांत बनाया है। ब्रह्मा जी योनियां बनाते हैं, लेकिन ये भौतिक प्रकृति दुर्गा माता द्वारा पालन पोषण और सर्वनाश इत्यादि भी करते हैं। इसीलिए भगवान शरीर का रखरखाव की जो बातें हैं जिसके लिए हम संसार में किसी न किसी ढंग से बने रहना चाहते हैं और भविष्य की चिंता भी नहीं होती, तो ऐसी हमारी समक्ष जो प्रकृति द्वारा जो प्रेशर यानी कि दबाव है और मन की इच्छाओं का जो दबाव है, दोनों का सम्मिश्रण जब होता है तो हमें मूड बना देता है। दोनों मिलकर हमें अपनी असलियत भुला देता है, वो बेहाशक्ति के नाम से जाना जाता है। हम समझते कि हम कलयुग में जी रहे हैं और बिना पढ़े लिखे तो पेट पालन भी नहीं हो पाता, आज इतनी कॉम्पिटिशन है हम करें क्या, इसलिए सारा जीवन हम अज्ञानता के विषय यानी कि जो ये शरीर मर्यादा वाला जो विषय उस पर ही सारा जीवन गंवा देते हैं। हम सच जो है हमारे में जो सत्य जो है उसकी परवाह न करके हम पशुवत जीवन जीते हैं। जो अपने आप को हम जान न पाए और मर जाते हैं तो जीवन पशुवत बेकार हो गया। पराभवस्य अबोध जातो जावान्न जिज्ञासम आत्मतत्वम जावत क्रिया तावत मनोभी कर्मात्मकम एव शरीर बंधन। ये कपिल देव देवहूति को बताते हैं कि हम लोग प्रमत्त बनकर नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, जो नहीं करना है जो सूचित भी नहीं वो करते रहते हैं। ये कौन सी कॉम्पिटिशन है? पशुओं में तो ऐसी कंपटीशन नहीं दिखाई देती, मनुष्यों में क्यों दिखाई देती है? और जो सुचित कर्म है, सुचित कर्म गुण और कर्म विभाग से मनुष्य की प्रकृति बनी है, वो जिसे हम वर्णाश्रम धर्म कहते हैं कोई जाति धर्म नहीं है, वो गुण के अनुसार हमें सारे समाज में भगवान ने ऐसा डिविजन किया है गुण कर्म विभाग से। तो वर्णाश्रम धर्म में आश्रम की जब बात आती है तो उसका उद्देश्य आश्रम मीन्स डिसिप्लिन, श्रम नहीं जहां वो आश्रम होता है, नहीं तो गधा भी श्रम करता है लेकिन गधे के लिए हम आश्रम की चिंता नहीं करते। हम भी सारा जीवन सिर्फ श्रम के ऊपर रहते हैं। मायावादी लोग क्या करें, श्रम एव ही जयते हैं। वो लोग कहेंगे कि मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है, आपकी फैक्ट्री है आपका मंदिर, जहां आप श्रम करोगे पाओगे, कर्म ही पूजा है। यानी कि हमें ऐसे चक्कर में डाल दे, पहले तो मोहित तो है ही, मोह में अज्ञानता होती है, सच का परिचय नहीं होता। भगवान कहते हैं कि यहां सत्य का परिचय करवाऊंगा मैं, इन तीन श्लोकों में सत्य का परिचय करवाते हैं और ऐसे उदाहरण देते हैं जो हम हमारे नजर समक्ष ये सारा आना जाना दिखाई देता है, लेकिन हमें इससे ज्यादा ख्याल क्यों नहीं आता? वही आश्चर्य सबसे बड़ा होता है। वो महाभारत में युधिष्ठिर ने बताया, यक्ष परीक्षा कर रहा है युधिष्ठिर की, तो ये प्रश्न भी पूछ रहा है कि युधिष्ठिर बताओ सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, अहनी अहनी गच्छन्ति मानवा यमालये दिन अह यानी कि दिन होते ही हम देखते हैं कि अपने परिवार में से कोई निकल गया या दूसरे मित्रों के परिवार से निकल गया। अहनी अहनी दिन ब दिन हर रोज कोई ना कोई जाता रहता है, लेकिन स्थावरम शेषम स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य तत्पर। जो बाकी रहे हैं उन लोगों को ख्याल ही नहीं आता कि हमें भी कोई चार कान उठा के ले जाएगा, वो दृश्य हमारे नजर में नहीं आ, इससे बड़ा आश्चर्य कौन है। तो ये अज्ञानता प्रकट कर रहे हैं कि हम मनुष्य जिन लोगों के वृत्ति में अपने आत्मा की खोज के बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठते हैं और बिना खोजे हुए मर जाता है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए, उसका जैसा मन है तावत क्रिया, जैसे कर्म किए हैं उस पर ही तो आधार रखा है। जावत मनोभी, जावत क्रिया तावत मनोभी, और कर्मात्मकम एव शरीर बंधना, इसीलिए कर्म से ही हम शरीर पर आसक्ति रखते हैं। भगवान कर्म करने की भी मना कर रहे हैं, यदि करना ही है परवशता से करोगे, लेकिन क्या करोगे? कर्म, कर्म करने में अधिकार है, लेकिन कौन सा कर्म करने के अधिकार है? उनकी राय से कौन सा कर्म करना चाहिए वो नहीं जानते, वो तो सिर्फ कह देते कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो मां फलेषु कदाचन में भी वो ही बता दें कि हाँ हम तो इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन आता है उसका क्या करोगे? बंधन में फंसोगे, अज्ञानता में फंसोगे। तो भगवान सारी स्पष्टता करते हैं कि हमें सीधे जो कर्म अकर्म और विकर्म इन क्या चीज है उसकी पहचान कराते हैं। कर्म जो फल देता है और फल जो बंधन करता होता है वो कर्म, फल देने वाला और बांधने वाला काम कर्म कहलाता है। लेकिन अकर्म क्या है? भगवान की प्रीति के लिए करा हुआ कर्म अकर्म, जो फल देते भी बंधन में नहीं डालता, क्योंकि ये सारी जो हेतु लक्षी जो कर्म है वो भगवान का हेतु बताते हैं। और तीसरा विकर्म, जो सूचित नहीं है वो, तनूनम प्रमत्त गुरुते विकर्म जड़ेन्द्रिय वृत्रणे आपणोति, अपने शरीर की जड़ इंद्रियों की वृद्धि के लिए हम ये कर्म करते रहे। न साधु मन्ये आत्मा, आत्मा के लिए ये अच्छा नहीं। असन्नपि क्लेशद आशदेह, ये शरीर असत यानी काम चलाव होते हुए भी क्लेशद है, एक तो काम चलाव है, दूसरा दुख देने वाला है, सुख तो देता ही नहीं, शरीर कभी सुख नहीं देता। जो ठगा हुआ सुख सुख होता है क्या? हम उसे क्या तृप्त होते हैं? बिल्कुल। लेकिन मूर्ता शायद हमें मनाने की कोशिश करेगी, अरे भैया ऐसे ही करो, पियो खाओ और मजा करो, हाँ उसमें ही सुख है, लेकिन दुख की नौबत लाता है। जो विषय है सुख के लिए हम उपयोग में लाते हैं वही दुख की योनियां बताते हैं। तो भगवान की ये अटपटी बातें नहीं है, सीधी साफ बातें, लेकिन हमें ये भाव जो है, एक क्षर भाव दूसरा अक्षर भाव, क्षर यानी कि गिराने वाला, वो अज्ञानता का भाव है, और अक्षर यानी कि जो अपने ज्ञान में स्थिर कहता है वो कभी गिराएगा नहीं। हम शरीर में होते हुए भी हमारी स्थिति न गिरने वाली बने, इसके लिए यहाँ हमें ये स्पष्टता हो रही है। तो जब ब्रह्मा जी जो कितने अरबों खरबों साल तक इनके जीवन का 100 साल गिना जाता है, अपने अपने जो साल के हिसाब से ब्रह्मा जी के 100 साल, क्योंकि ब्रह्मा के 12 घंटे में 1000 बार 4 युगों का आवर्तन होता है, और उसमें सबसे छोटा कलयुग है जो 4,32,000 साल का बताया है, हमने तो उसमें से 5,000 साल ही काटे, और 5,000 साल में आपने कितने चक्कर मारे, मैंने कितने मारे होंगे। कलयुग में 100 साल जीना तो बहुत मुश्किल हो गया ना। भागवत में तो ये कहा कि और कलयुग बढ़ेगा, लोग छोटे बनेंगे, बड़े नहीं बनेंगे और ज्यादा नहीं जिएंगे। 35 साल का आदमी बूढ़ा कहलाएगा, 35 साल का। तो ये सब कोई अटपटी बातें नहीं है, लेकिन काल का प्रभाव है जो नाशपंथी है। कालो अहम अस्मि लोक क्षय प्रवृद्ध, भगवान का ये जो फीचर यानी कि लक्षण है तो काल के रूप में उपस्थित कलयुग उसका प्रतिनिधि है, लेकिन जितनी अवधि दी गई है हमें जीने की, उसमें हमारी सत्य की पहचान करने के लिए जो मौका देती है उसका हम बिल्कुल फायदा नहीं उठाते। तो इसीलिए मूर्ता वाला जीवन शरीर संबंधी होता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी को भी पैदा होते हुए सिर्फ 12 घंटे में सोने की जबरदस्ती पड़ती है और वो जब सोते हैं तो सब कुछ इनके माध्यम से जो पैदा हुआ है 84 लाख योनियां पैदा हुई है वो भी सोएगी, वो इस कैसे जी सकती है। जो बनाने वाला को जबरदस्ती से सोना पड़ता है तो हमारी हालत क्या होगी। हमें तो थोड़ा इतना ही इस थोड़े जीवन में ही अनुभव है कि चलो ये आया मर गया, हमारे थे, फोटो रख दो कायम की याद रहेगी, लेकिन नहीं, सबको जबरदस्ती से जाना पड़ता है। तो हम ब्रह्मा जब जाते हैं तो कितनी बार जा चुके हैं उसका कोई परिचय है हमें? तो ये छोटे जीवन में छोटी सी ये जो घटना ब्रह्मा के हिसाब से गिनी जाती है कि जीवन मरण बहुत मामूली है ब्रह्मा की नजर में, क्योंकि उनका 100 साल और हमारा 100 साल में कई अरबों खरबों के गुणांक का अंतर है। तो दूसरे जीवन का तो हम ख्याल करते ही नहीं, क्योंकि हम भी जबरदस्ती से हमें अपने दिन के बाद भी सोना पड़ता है। सोने को, अज्ञानता को और मृत्यु को, तीने तीन तमोगुण का प्रभाव बताते हैं। हम जब जबरदस्ती से सोते क्यों हैं, जगे क्यों नहीं रहते? सोने की जबरदस्ती पड़ती है वो कौन देती है? प्रकृति के तीन गुण शरीर को थक जाते, शरीर में करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं वो काम करते थक जाती है तो हम पर सोने की। लेकिन आत्मा कभी सोता है? उसको सोने की क्या जबरदस्ती है? तो अज्ञानता उसको भी धक क्यों लेती है? क्योंकि वो अपनी असलियत भूल गया है। इसलिए भगवान अपनी असलियत क्या है उसकी जाहिरात करते हैं कि देखो ब्रह्मा को भी जबरदस्ती पड़ती है, तब सारी जो सृष्टि उसने पैदा की है तो वो भी चली जाती है। और ब्रह्मा जब जगते हैं, यानी कि उसने 12 घंटे उतने साल और खरबों की जो बात है कुछ नहीं, सब जीरो, लेकिन भगवान विष्णु के पेट के अंदर समाते, क्योंकि वहीं से जो नाभि से कमल निकलता है और कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, तो वो तो दिन का क्या ये भाव बता है, लेकिन रात्रि के समय कमल भी बंद हो जाता है और विड्रो हो जाता है। तो जाएंगे कहां? सब भगवान विष्णु के अंदर हम समा जाते हैं। ये गर्भोदक्षाय विष्णु की बात है। और सर्वप्रथम विष्णु जो है वो महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु है, उनके तो ये सब जब ब्रह्मांड पैदा हुए हैं उनके श्वास और उच्छ्वास दरमियान आने जाने की चेष्टा करते हैं। यानी कि जब महाविष्णु श्वास लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड इनके अंदर चले जाते हैं। ये तो अपना एक ही ब्रह्मांड की बात है जिसमें गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मा को पैदा करते हैं, प्रथम जीव को। तो कहने का मतलब है हमारी चेतना की जो जागृति भगवान का नाम लेकर आध्यात्मिक स्तर की जो शक्ति है वो हमें जगाती है, तो वो लेने से हमें ये स्पष्टता होगी कि छोटी सी उम्र में भी हम भगवत प्राप्ति कर सकें। ऐसी क्वालिटी वाली चेतना जब भगवान की चेतना है, कृष्ण भावना भगवान की चेतना है, वो चेतना उनसे आती है, हमने तो खुद पैदा नहीं की है, और उसको शक्ति देने वाले परमात्मा के रूप में आत्मा के अंदर छोटे बनकर भी वो सारी चीजों का संचालन कर। लेकिन जब तक हम अपने ओर से देखें तो हमारे में कोई ताकत, हम तो जानते हैं कि बच्चा पैदा होता है वो लाचार होकर आता है, लेकिन आत्मा जब शरीर में आता है तो क्या वो लाचारी नहीं अनुभव करता? और शरीर के प्रलोभन से वो इतना आकृष्ट हो जाता है कि वो अपनी असलियत भूल जाता है, वो उसका जो पूरे पूरा रूपक वर्णन श्रीमद् भागवत में पुरंजन की कथा में आता है कि आत्मा पिता के रज पर जब माता के शरीर के अंड में जो जब फलित होता है तब से मोह पैदा हो, अंदर की सृष्टि एक कोश की सृष्टि भी बहुत बड़े ब्रह्मांड जैसी ही है, एक छोटी सी आत्मा को ये सृष्टि के प्रति मोहित हो जाता है, वहां उसकी भौतिक बुद्धि के साथ वो शादी कर लेता है और देखो बाद में जो जंजाल पैदा करते हैं वो अपना विस्तार करता है, एक कोश में से दो कोश, दो में से चार, चार में से आठ, मल्टीपल। हम क्या एक कोश में थोड़े जी रहे हैं, जब आत्मा की उत्क्रांति होती है, इवोल्यूशन, आत्मा शरीर का नहीं, हम डार्विनिज्म की बात नहीं करते क्योंकि वो बोगस है, लेकिन आत्मा की उन्नति के बारे में, आत्मा की उत्क्रांति होती है वो देखना कि वो कितनी सजाग बन सकती है, इसलिए मनुष्य और पशुओं में भेद बताया है, वो आत्मा के स्तर पे ही। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पर पशुओं में आत्मा नहीं है, जैसे क्रिश्चियन कहते हैं कि मारो काटो खाओ, नहीं, जो जो जीवन है वो सभी जीव हैं और जीव में आत्मा होती है, चाहे वो एक कोशी जीव हो या बहुकोशी हो। तो ये भेद जानना है कि क्षर प्रकृति है, क्षर प्रकृति के अनुभव में भी हम इतने मोहित हो जाते हैं कि ये ब्रह्मा जी का जब जीवन की बात कर रहे हैं कि उसको भी जबरदस्ती से सोना पड़ता है, तो हम सोचते हैं हमारा दिमाग नहीं चलता उस दिशा में, यूं कह देंगे ये तो सब मान्यता है, नहीं स्पष्टता है। स्पष्टता और मान्यता में बहुत अंतर है, मान्यता कभी आपकी स्पष्ट नहीं होगी, धर्म मान्यता के आधार पर नहीं टिकता। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने ये जीवन का रहस्य धर्म के आधार पर ही खोला है। तो भूतग्रामं स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलियते रात्र्या अवगमे अवशः पार्थ प्रभवत्य रागम। अवशः यानी के जबरदस्ती, हम तो सोचते हैं कि हम स्वतंत्र होंगे, चलो देश को स्वतंत्र करो तो हम भी स्वतंत्र होंगे, लेकिन देश कभी स्वतंत्र हुआ ही नहीं, परतंत्रता हम अनुभव कर रहे हैं। जब एक शरीर पर इतना दबाव है कि हम परतंत्र रहे हैं, हम स्वतंत्र इस जीवन में कभी अनुभव करते ही नहीं। एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का इस तरह दुरुपयोग कर रहा है, जो स्वतंत्र है वो उस पर शरीर परतंत्रता थोपती है, फिर भी अपने आप को स्वतंत्र क्यों मानता। आप कभी हड़ताल पे गए हैं? हड़ताल एक जबरदस्ती का उपाय है, लेकिन आप अपने शरीर पर हड़ताल पर गए हो, चलो खाएंगे नहीं, चलो टॉयलेट जाएंगे नहीं, अरे जबरदस्ती पड़ती है, और आपके कारण जबरदस्ती नहीं, दूसरों के कारण जबरदस्ती पड़ती है। ये शरीर में इतने सारी कोशिकाएं हैं, इनको सबको खिलाने के लिए पेट दिया गया है, नहीं तो आत्मा को पेट होता नहीं। आत्मा की तृप्ति भगवान के साथ का जो नित्य सनातन संबंध है उस पर नपती है, उस पर टिकती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो सृष्टि है भगवान ने आने जाने वाले की बनाई है, लेकिन उसके उपरांत परस्तस्मात् भावोन्यो अव्यक्ता व्यक्त सनातन, अव्यक्त और व्यक्त दूरों से जो परे है उसको सनातन कहलाता। ये शरीर आता है जाता है तो व्यक्त और अव्यक्त बन गया। जब भगवान आते हैं अवतार लेकर तब ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धय, मूर्ख लोग जब मैं अवतार लेकर आता हूं तो वो ये समझते हैं कि मैं पहले अव्यक्त था अभी व्यक्त हुआ। नहीं, भगवान हमेशा होते हैं, हम ये चमड़ी की आंखों से नहीं देख पाएंगे, न तो ये पांच इंद्रियों द्वारा हम समझ पाए, अपनी इंद्रियां मर्यादित, ये इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है, उसे अपरोक्ष ज्ञान और इंद्रियातीत ज्ञान कहते हैं, जो वास्तविकता लाती है। दूसरी चीज काम चलाव है, उसे हम नकारते तो नहीं, स्वीकारनी पड़ती है क्योंकि जबरदस्ती है, इसलिए स्वीकारनी पड़ती है। लेकिन उस पर हम आधार बनाकर अपने जीवन को विकसित नहीं कर सकते। भारतीय मूल वैदिक संस्कृति इस पर आगे बढ़ी है, पाश्चात्य संस्कृति शरीर पर बनी है, आत्मा पर नहीं बनी, यानी कि पशुवत जीवन है, चाहे पॉलिश्ड पशु हो या कुछ भी। तो कहने का मतलब है कि ये भौतिक प्रकृति आने जाने वाली की बताई है, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं है, परस्तस्मात् तु भावोन्यो, उससे उपरांत दूसरी जो प्रकृति है, हाँ, तो उसकी स्पष्टता आगे भी करेंगे कि जो प्रकट है, भूमिरापनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इति में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये जो प्रकट प्रकृति है, हाँ, जो पहले अप्रकट थी, लेकिन अप्रकट होने का मतलब ये नहीं कि इनके तत्व नहीं थे, उनको प्रकट करने में भगवान महाविष्णु का की नजर है, ध्यानावस्थित गतिन मनसा, उसके लिए यही मुद्दे पर बहुत बारीकाई से ध्यान और समाधि लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि महाविष्णु ने स इक्षति स इमान लोकान असृजत, भगवान ने अपनी दिव्य नजर करके ये भौतिक सृष्टि जब अप्रकट थी, लेकिन अपने मूल तत्व में प्रधान प्रकृति के रूप में एक बादल की तरह सारे आकाश में एक कोने में अटूला बादल है ऐसे पड़ी थी, उस पर नजर कर रहे हैं, हा? तो लेकिन ये दिव्य नजर में जो सच्चिदानंद भाव है, तो भौतिक प्रकृति जो विरोध स्वभावी भगवान ने बनाई है, वो उसके परावर्तित सत्व रजो और तमोगुण का भाव पैदा होता है, उसे महत तत्व कहा जाता है। महत तत्व में भगवान विष्णु की यह आध्यात्मिक नजर हर एक जीवों जो भगवान से विरुद्ध इच्छा करके आए इनको दाखिल किया जाए, ये श्रीमद् भागवत में उसकी स्पष्टता हुई है। ये जीवों भौतिक प्रकृति के गर्भ में बैठे हैं, इसलिए भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयन्ति संभवन्ति जा तासां महद्योनिर् अहम् बीज प्रदप्पिता, ये भगवान कहते हैं। तब भगवान का तत्व समझने के लिए भगवान पहले खुद अपना बयान रजू कर दे कि मैं कौन हूँ, वो सनातन भाव में हमेशा बने रहते हैं, हमारे जैसे आने जाने वाले भौतिक भाव में नहीं है, और आत्मा को भी कह देते हैं अपरे नितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। ये अष्टधा प्रकृति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, हाँ, मन बुद्धि और अहंकार, इसमें पांच महाभूत कहलाती है, तीन सूक्ष्म कहलाती है, मन बुद्धि और अहंकार, लेकिन वो भौतिकता के गुणों से आच्छादित है, इसलिए लेकिन ये मन बुद्धि और अहंकार आत्मा को अपने व्यवसाय में जुड़ाने वाला है। मरते समय जो जो भाव को याद करके मनुष्य शरीर त्याग करता है, तो वही निश्चित भाव दूसरे जन्म में प्राप्त करता है। तो यदि मनुष्य मेरे भाव को याद करके शरीर त्यागेगा, तो मेरे भाव को अवश्य पाएगा। तो ये भाव है सनातन भाव, ये अभी यही भौतिक शरीर में हम अपनी चेतना की जागृति के द्वारा ला सकते, इसलिए भगवान समझाते हैं कि परस्तस्मात् तु भावोन्यो अव्यक्ता व्यक्ता सनातन, अव्यक्त और व्यक्त से भी परे जो कहलाता है उसका नाम सनातन है। अव्यक्त और व्यक्त हम अपनी नजर में और आंखों से ही थोड़ा देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जब आंख नहीं देख पाती तब क्या, अज्ञानता। लेकिन ये अज्ञानता को भी आगे छेद करके उसको पार करके भगवान की चेतना का विकास बता, वो आत्मा इनका अंश होने के कारण समझ सकते, अनुभव कर सकते और भगवान के पास जा भी सकते। तो यही हमें भगवद गीता के माध्यम से अपना जीवन सार्थक करके भगवान के वापस जाने के लिए हाँ कोशिश करनी चाहिए, वो मनुष्य जन्म कहलाता है, दूसरा कोई हेतु नहीं है। इसलिए मनुष्य जन्म महामूला अवसर कहलाता है कि यदि हम भगवान के नाम द्वारा भगवान की चेतना जागृत करके हम अपने आत्मा का विकास कर सकते हैं। तो ये तीन श्लोकों में काफी अच्छे ढंग से बताया है जो पुनर्जन्म के आगे कोई इच्छा भी नहीं रहे, ऐसा भाव है। माम उपेक्ष्य तु कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमां गतिः न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। ये सनातन धाम है, यहाँ कोई भी भौतिकता की आवश्यकता ही नहीं, चाहे सूर्य की हो, बिजली की हो, चंद्रमा की हो, ये तो परावर्तित प्रकाश है। जब आत्मा भगवान के साथ तालमेल रखता है तो स्वयं प्रकाशित होता है। ये परावर्तित प्रकाश से हमें देखने की आवश्यकता, सीधे प्रकाश। तो भगवान हमें वो सनातन भाव में लाना चाहे, ये काम चलाओ भाव में हम सत्य का परिचय नहीं कर पाते। तो पहले अज्ञानता दूर करने के लिए भगवान आग्रह करते हैं, इनका कहा करने वाले को भी भगवान का अनुग्रह होता है। वैसे मान्यता से हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान का समझना भी भक्ति कहलाती है, क्योंकि श्रवणम भगवान के बारे में बोलना जैसे वो कहते हैं इस ढंग से, ऐसे नहीं कि जो भगवान के साथ हमें बैर भाव है चालू रखें, जिसके कारण हमें भौतिकता में आने की जबरदस्ती पड़ी। तो ये भाव ज्ञानियों को भी चालू रहता है बैर भाव, तो भागवत उसे भी ठप कराते। मायावादियों का तो पूछना ही क्या, सारे समाज में जो जो आत्म तत्व नहीं बताकर अपना उद्धार करने की भावना ही नहीं रखते, वो सब माया या अप्रतज्ञाना या आसुरीन भाव मास्ता, वो लोग भगवान के मंदिर में नहीं जाएंगे और अपनी अपनी दुकान खोल करके उल्लू के पट्टे सब हमें अपना जीवन का सत्यानाश करेंगे। श्री प्रभुपाद जी उनमें से नहीं थे, भगवान के हृदय स्पर्शी सारी बातें करते थे, क्योंकि एक विशुद्ध भक्त भगवान की इच्छाओं को इस ढंग से ही जान सकता है, जैसे वे कहते हैं वैसे ही अपनाओ। हमें अपनी अकल अंदर लगाने की कोई पहले तो बेवकूफ है ही है हम, फिर भी हम अपनी अकल लगाने के लिए अहंकार क्यों प्रदर्शित करें। जैसे कहते हैं वो करो और स्वीकारो, क्या तकलीफ है। अहंकारम विमूढात्मा कर्तारम की मन्यते, इसी तरह तो कहीं ऐसे भगवद्गीता का आश्रय लेकर स्वयं भगवान बनने की कोशिश कर चुके हैं और फिर भी मरे हैं। ये सनातन भाव को प्राप्त नहीं हो। किसी को कोई प्रश्न है, प्रश्न लिख कर भी दे सकते हैं, कागज पेन से प्रश्न लिख लो दे दो, पता भी नहीं चलेगा कौन बोल रहा है। हरे कृष्ण, दोनों अलग क्यों बनाते हो, आपका व्यवसाय क्या भगवान की भक्ति नहीं बन सकता। वही तो कला सीखनी है कृष्ण भावना में आकर, ये इच्छा है बहुत बढ़िया है, लेकिन मौके का फायदा उठाओ। चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा है स्थान स्थित, आप जो व्यवसाय में हो, जो स्थान में है, कोई भी आश्रम वर्ण में हो, स्थिर रहो वहाँ, स्थान स्थित। लेकिन श्रुतिगताम तनु वांग मनु, अपने शास्त्रों में क्या सूचित है उसे अवगत हो और बाद में आप उसे उसको भक्ति के रूप में पलट सकते हैं। जब श्रुति से अवगत ही नहीं है, जानते नहीं, तो गुरु के पास जाना चाहिए, वो कुशलता बनाएगा बताएगा। तो कहने का मतलब है कि अपना व्यवसाय अपना कर्म क्या बनना चाहिए, यज्ञ बनना चाहिए। कर्म और यज्ञ में क्या अंतर है, कर्म यदि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति या अपने विस्तारों की इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो वो कर्म बंधनकारी है, लेकिन भगवान की प्रीति के लिए जो कर्म किया जाता है वो कर्म बंधन से छुड़वाता है, उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन,
तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाज। जीते जी ही मुक्त बनना है तो जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान की प्रीति के लिए करना चालू कर दो।
हाँ, भगवान की प्रीति और मेरी प्रीति, आज तक मैं अपनी प्रीति के लिए कर रहा हूँ तो भगवान की प्रीति के लिए कैसे कर सकते।
गुरु कुशल होते हैं भैया, जितना आवश्यक है जब तक ये
पड़ा है ना शरीर, दूसरों के लिए जीना है ना, ये शरीर भी दूसरे का है ना, हमारा थोड़ा है। कौन कौन बस रहे हैं इसमें, हड्डी है, पसली है, स्नायु है, लहू है, सब में जीव है। वो तो जबरदस्ती से इनको बचाने जिलाने के लिए हमें खाना पड़ता है, और हम समझ रहे हैं कि क्या चलो मैकडोनाल्ड्स में जाओ रहेंगे। आपका शरीर नहीं मांग रहा है, आप मांग रहे तो कितने आसक्त होंगे आप। शरीर को जबरदस्ती खिलाना पड़ता है क्योंकि वो मांग रहे हैं। शरीर कहता है कि तू हमारा संचालक होगा, लेकिन संचालन तो भरण पोषण भी करना है, तो जबरदस्ती से खिलाओ। हम अपनी शरीर पर आसक्ति के कारण ये जबरदस्ती को समझ नहीं रहे और हम अपने को शरीर मानने लगते हैं कि हम शरीर हैं। इसलिए हम आत्मा है वो समझने में भी बहुत मुश्किल आती है। यह अनादिकाल से चला आया है, जन्म मरण के चक्कर से चला आया है। तो जब हमें अपने कर्म को सुधारने की जब बात आती है तो क्या सुधारना है, कर्म बंधन में न फंसे। कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल में हमारा अधिकार नहीं, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं तो वो भगवान की शक्ति उधार लेकर कर रहे हैं। जब व्यापार कर रहे हैं और उधारी से व्यापार करते हैं तो क्या कर्जा कम होता है या बढ़ता है, कभी दिया है? तो यज्ञ द्वारा एक कर्म यदि भगवान की प्रीति के लिए करना चालू कर देते हैं तो उधारी भी चुकती हो जाएगी। ये तो जितने जन्म लिए हैं उतने सारे में उधारी कर रखी है, उसका हिसाब क्या है? पहले तो आए थे लाचार, भगवान ने हमारे लिए सब सवलत करके दूध कहाँ है, पानी कहाँ है, हवा कहाँ है, सारी शक्ति उनसे हमें प्राप्त हो रही। हमारी इच्छा की तृप्ति के लिए भी वो मार्गदर्शन परमात्मा के रूप में दे रहे हैं, हमें उन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि तू एक क्षुद्र अंश है मेरा, लेकिन मेरा अंश है किसी और का नहीं, हम प्रकृति के नहीं है। जब बच्चा होता है तो माँ की गोद में क्यों पलता रहता है, पिता के पास क्यों नहीं जाता, अकल नहीं है। इसीलिए तो माँ की जिम्मेदारी रहती है कि चलो पिता कौन है बताएंगे, थोड़ी समझ आएंगे। बाद में थोड़ा बड़ा होता है तब माँ अपनी गोद में से हटाती है, जा जा तेरे पिता के पास, बेबी सीटिंग करो आप। तो दुर्गा माता भी ऐसी करती है, जाओ पिता के पास, नहीं जाओगे, गोद में खेलना चाहते। जीव जागो गौर चंद्र बोले,
कटो निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। हम भौतिक प्रकृति का इतना उपहास करते हैं, इतना उनका अब्यूज करते हैं। माँ का कभी अब्यूज होता वो मारेगी, दंडित करेगी, चाहे केदारनाथ में हो या कहीं भी हो। भौतिक प्रकृति की इनका अधिकार है, वो भगवान की इच्छा के अनुसार काम कर रही है, वो सफाई कर देगी। शिव जी के पास लोग क्यों जाते हैं पता है?
धनम देही जन्म देही स्त्री देही 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 देही,
और ये फक्कड़ बाबा के रूप में शिव जी सबसे अलिप्त है। ऐसी जगह पर भी हम लोग छोड़ते नहीं इनका पीछा, मांगने के लिए जाते हैं तो माँ कहते तो परेशान कर रहा है, हटियो यहाँ से, तो सफाई कर दी। कोई अपने आत्मा की मुक्ति के लिए शिव जी के पास थोड़ा जाता है, यदि जाता है तो क्या कहता बताओ, शिव जी करते हैं वैसा करता है? नहीं करता है, और शिव जी को परेशान करने के लिए जाता है। ये सबसे बड़ा अज्ञानता का जो दुख है वो यहाँ, वो धर्म की हानि है। लेकिन जीव अपने शरीर के ही प्रति आसक्त है, पशु योनि जैसा बना रहा है, मनुष्य जन्म का जो सचमुच फायदा है वो उठा नहीं रहा, तो वो देह की आसक्ति के लिए ही देवताओं की उपासना करेगा, उसे कर्मकांड कहते हैं। कर्मकांड, आप कर्मकांडी थोड़े हैं, जब भक्ति की बात कर रहे हैं तो आपका कर्म कर्मकांड नहीं बनना चाहिए, बल्कि तो चैतन्य महाप्रभु जैसे कहते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्व कर्माणि मुक्त संगम समाचरेत। हमें अपने कर्मों को इस तरह मोड़ना चाहिए कर्म के फलों को जो मुक्ति दे सके। भौतिक आसक्ति के लिए यदि हम कर्म करते रहते हैं तो हमें फंसाएगा ही फंसाएगा, उसे हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। भागवत में तो पहले स्कंद में स्पष्टता है कि यदि मनुष्य जीवन मिला है तो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला, ये बताया इंद्रिय तृप्ति के लिए। न इंद्रिय प्रतिलाभो जीवे तयावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाश्चेय कर्म भी। अपने कर्मों का अर्थ जीव की वास्तविक जिज्ञासा की ओर हमें समाधान मिले ऐसे ले जाना। जब तक जीते हैं तो इंद्रिय प्रति के लाभ के लिए नहीं जीना चाहिए। हमारा सारा जीवन देखो कि इंद्रिय की प्रति के लाभ के लिए ही जिए हैं। जब भगवान समझाते हैं कि ये सब फोकट का क्यों जी रहे हो, तो जैसे कोई डांट मारता है इस तरह हम भगवान का इनसे दूर ही रहते हैं, ये तो डांट मारते हैं। शिव जी डांट नहीं मारते हैं, आशुतोष है। हम कहेंगे वो दे देंगे, इतना भरोसा होता है इन लोगों को, आशुतोष है, बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्यों प्रसन्न होते हैं आपको मालूम है? ले जा और माया तुझे संभालेगी, मेरी जान छोड़, ऐसे ले देते था। ले जा, वो अपने दुश्मन को भी दान दे देते हैं, वर देते थे वृकासुर जो भस्मासुर के नाम से भी जाता है, जाना जाता है। कर्म में भी भक्ति होगी, क्योंकि भक्ति तो अपने कर्म द्वारा ही बनती है। लेकिन कौन से कर्म होने चाहिए, ये भगवान की प्रति के लिए ही कर्म करने से। पर लेकिन ऐसा विश्वास जो सच्ची श्रद्धा बताता है कि मैं भगवान के लिए ही जो कर्म करूंगा उसमें ही सब कुछ कृत हो जाए। कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म कृत होए, ये दृढ़ विश्वास जो जिसको होता है वो श्रद्धा के, बाकी सब कच्ची श्रद्धा होती है। श्रद्धा शब्दे सुदृढ़ विश्वास कर निश्चय कृष्णे भक्ति करिले सर्व कर्म कृत हो, ये श्रद्धा की व्याख्या है, बाकी सब मान्यता है। मान्यता और श्रद्धा में ये अंतर है। श्रद्धा में बुद्धि का उपयोग किया जाता है, मान्यता में मन का उपयोग किया जाता है। मन चंचल इसीलिए है क्योंकि ठगावा है, उनके आधार पर धर्म नहीं बनता। यानी कि मानसिक तौर से मन चंगा तो कथरोट में गंगा नहीं काम करेगी। बुद्धि कहाँ, बुद्धि के लिए भगवान कितना आग्रह करते हैं। लेकिन जिसके पास बुद्धि नहीं है लेकिन भगवान का भक्त है, तो तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान देते हैं, क्या भगवान ने कुछ नहीं दिया है? ऐसा थोड़ा है, बुद्धि क्या अपने बाप की थोड़ी है, बुद्धि कहाँ से आती? भगवान के मैं देता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञान पोहनम च। स्मृति याददाश्त, ज्ञान रियलाइजेशन, और अपोहनम यानी कि भुलावा। हमारे में कोई ताकत अपनी नहीं कि हम खुद भूल जाए भगवान। भगवान को ऐसा ऐसी माया हम पर छा देते हैं जो भुला देती, नहीं तो अपने आप में कोई शक्ति नहीं, भूलने की भी नहीं। भगवान तो ये चाहते, तो क्या चाहता है? स्मृति चाहता तो दे दूंगा, रियलाइजेशन चाहता वो भी दे दूंगा, मुझे भूल जाना चाहते हैं मैं भुला दूंगा। हम तो सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, दूसरी कोई ताकत नहीं है। सब उधार धंधा, ये जीने का धंधा उधार है, तो उधारी चुकाओ, यही जीवन का सबसे बड़ा महत्व का हमारी फर्ज बन जाती है। 50-50 चालू कर दो, भक्त बताएंगे रूप गोस्वामी की है कि कैसे उधारी चुकानी है। 50-50 बाद में कह दो। और किसी को कोई प्रश्न है?
यार दोबारा बोलो।
हाँ जी, अरे भैया शॉर्टकट मारना चाहते हो? इनके कर्म देखो, जो किया है जिंदगी भर वो ही सामने आएगा। आप जबरदस्ती कितनी करोगे? करना है तो हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र की टेप रिकॉर्ड रख दो, हाँ यदि सुन पाएंगे। लेकिन जो सुनता ही नहीं, बचते रहती है, उसका क्या? वो तो आत्मा की इच्छा उसके सारे जिंदगी के करे कराए कर्मों पर ही तो टिकती है ना, वही भाव। चलो कोई व्यक्ति है, मनुष्य का शरीर मिला है, फिर भी सुअर जैसा जीवन जी रहा है, तो उसको सुअर का भाव ही याद आएगा मरते समय। कहना कि अपने कर्म कैसे हैं, कर्म की जंजाल में कैसे फंसे हैं, तो वो याददाश्त उसी तरह की बनी रहती है। कर्मात्मकम एव शरीर बंधन, शरीर बंधन में है, अब छोड़ेगा, लेकिन जो भाव कर्म द्वारा बना है वही तो उसको साथ में ले जाएगा। वो भाव मन में पड़ा है, मन में पड़ा है, मन कभी भूलेगा नहीं। जो जो अनुभव हुए हैं शरीर को, वो कभी भूलेगा नहीं। जैसा मन वैसा तन, दूसरा शरीर ऐसा ही बनेगा। इसलिए 5 साल की उम्र से ही चालू कर दो। कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतामि, ये प्रहलाद महाराज सिखा रहे, बचपन से ही चालू करना चाहिए। लेकिन कर्म की जंजाल हमें अपने को ऐसे फंसाती है कि अपने आप को भी भुला देती है। ऐसा भी मनाती है कि हम जंजाल में फंसे नहीं, लेकिन ये जंजाल दिखाई नहीं देती, होती है सही तो मरते समय ही याद आएगी। आप भक्त बनो, आपकी जिम्मेदारी है कि पितृ तारयति, पुत्र पितृ का तारण करना है। इन्होंने आपको जो मौका दिया है इसका तो उपकार समझो, हाँ इनकी अंत घड़ी बनी रहे। इसलिए ये आपस में जो क्या बोलते हैं कि एक दूसरे का उद्धार करने के लिए ही ये पितृ मातृ दुहित्र भ्रातृ तो पुत्र पुत्री ये सब तरह से जुड़े हैं प्राणाय उद्धार करने के, एक दूसरे से वचनबद्ध जुड़े हैं। पिता कहता कि यदि बेटा मैं तेरा उद्धार नहीं कर पाया तो तू तो मेरा करना। जो पिताओं का उद्धार नहीं करता है वो पुत्र नहीं कहलाता है, मूत्र कहलाता है। ऐसा परस्पर का है। और भागवत कहता कि यदि अपने आने वाली संतान या जो आश्रित होंगे उनका मृत्यु से उबारने का यदि हम प्रयत्न नहीं करते तो पिता भी बनना नहीं, माता भी नहीं बनना, गुरु भी नहीं बनना और स्वजन भी नहीं बनना, कोई अधिकार नहीं। जो हेतु के लिए ब्रह्मा जी को इस प्रजापति बनाकर वो विरासत हमें भी दी है मनु की संतान के रूप में, तो मूल उद्देश्य तो प्राण का है। ये भौतिक दुनिया में हम अपनी दुर्बुद्धि से फंसे हैं, हाँ, और भगवान उबारने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें भी सीधे ढंग से समझते नहीं, हाँ, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही नहीं। लेकिन कृष्ण भावना स्वीकार करके ये प्रैक्टिस अपने जीवन में उतारेंगे तो अवश्य बेड़ा पार। हाँ एक बार वहां जाकर वापस आने की कोई संभावना नहीं। हम तो अभी घबरा जाते, ये वापस नहीं आएंगे तो मेरे ये फ्रेंड का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, अरे कहां से कहां पहुंच जाते हैं। वापस भावना तो इतनी ऊपर है लेकिन ये अटैचमेंट हमें पटकता है नीचे। छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, त्राण करने का जो उद्देश्य है वो जो जो भगवान ने मार्ग बताया है, इनकी मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कार। तब अहंकार से कहते हमें क्या लेना देना, ये तो बोलते ही रहते हैं, ये धर्म शास्त्र का क्या है, बेर भाव चालू रहता है। भगवान के बेरी मत बनो, उसको समझो, उसके समझाए अनुसार ही हमारी सच्ची समझ आती है, नहीं तो हम कौन है अपने आप नहीं जान पाएंगे। हम पशुता से ऊपर कभी ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय।